मुक्ति कुंड कहलाता है या मुक्ता कुंड। हम लोग गए थे आशीश्वर कुंड में, तो कृष्ण ने अपनी मैया से, मैया के चरण छू रहे हैं, मैया को मना रहे, जो मैया हाँ मैं बच्चा नहीं रह गया, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मोटा वोटा हो गया हूँ, मेरी शादी कर दे। सगाई बरसाने से सचमुच में आ गई, बरसाने से सगाई आई, तो सगाई में लड़के के लिए कपड़ा लगता और नहाई और सब चीज़ें आती हैं, आभूषण आता है। तो वृषभानु महाराज जी की 11 लाख गायें थी, तो उन्होंने मुक्का मणियों की माला कृष्ण के लिए, अपने भावी जमाई के लिए, बात पक्की के लिए दिया, कपड़े लगते दिए, किंतु स्पेशल रूप में
खाली मुक्ता दे दिया,
मणियों की मुक्ता दी माला। जब यहाँ आया नंदगांव में, तो जितने वहाँ के पूर्वासी थे, बूढ़ी बूढ़ियाँ और बड़े बड़े लोग थे, देखने के लिए उत्कंठित थे कि सारे से सगाई पक्की करने के लिए कौन कौन सी चीज आई है। बक्से में भरा देखा, सुंदर सुंदर मोतियों की माला, कपड़े लत्ते अच्छे अच्छे, देख करके नंद बाबा के और यशोदा जी के होश उड़ गए। इसलिए होश उड़ गए, देख करके उनको आनंद होना चाहिए, अजय इसके बदले में ऐसे ही कोई चीज हमको लड़की के लिए भी तो भेजना पड़ेगा,
अधिक देना पड़ेगा,
इसलिए हमारे पास, और यदि इसको लौटा देते हैं तो कहेंगे ये गरीब आदमी है, ये हमारी दी हुई चीज को लौटाया, इसलिए अब क्या किया जाए। अब दूसरे तीसरे दिन में सगाई जाने वाली है उसी लड़की के पास, नंद बाबा बड़े चिंतित हो गए, यशोदा माँ जी से बातचीत करके ये ठीक कर रहे हैं, जैसे ये तो मणियों की जो माला आई है मुक्ता की, हम लोगों के पास में तो ऐसा नहीं है, अब क्या किया जाए। जब उनको इस प्रकार से कृष्ण ने चिंतित देखा, तो कृष्ण झट मैया के पास में, मैया वहाँ से सगाई में क्या चीज आई है, अच्छा कुछ नहीं आई है, आई क्या है। तो उन्होंने बहुत जिद किया, तो उन्होंने वो सब चीज़ें दिखलाई, तो उनको देख करके उनको बड़ी पसंद आ गई वो चीज़, मैं मैया ये हमको दे दे अभी, वो पहना दे अभी। मैया ने बहुत समझाया, वो मान नहीं रहे, मैया किसी काम के लिए इधर उधर गई, किंतु उन्होंने दिया नहीं, नंद बाबा से कहा, नंद बाबा भी नहीं दिया। इतनी बेशकीमती मणियाँ, ये बहुत दुर्लभ है संसार में, ये कैसे दी जाए, ये खेलेगा, ये इसका मूल्य नहीं समझेगा, इसलिए उनको नहीं दिया। बार बार जाने पर उनको डांट डपट करके समझा बुझा करके लौटा दिया, किंतु उनको तो ऐसी लत है, अभ्यास है, जो जिस चीज़ को देखेंगे और इच्छा होगी जरूर लेंगे। अब इसके बाद में वो जब इधर उधर चली गई और नंद बाबा से परामर्श करने लगी, कैसे इसको क्या इसके बदले में सगाई के लिए भेजी जाए, इतने में कृष्ण वहाँ आए और किसी प्रकार से चोरी करके एक मणि की माला उसमें से चुरा ली, और चुरा करके यहाँ चले आए। पंडा जी कह रहे हैं जब दाऊ भैया भी था, दाऊ भैया को ले लिया, दाऊ भैया को किस लिए लिया, हल चलाने में बहुत तेज है, उसके पास में हल है, इसलिए हल से चलाया, यहाँ कर्षण किया, बलदेव प्रभु से जुतवा लिया और ले करके वो जो मणि थी उसमें दे दिए, और इस कुंड को खोदा उसको पानी सिंचन करने के लिए, इस कुंड से पानी को वो अपने हाथों से सींचते, और जो एक दिन में ही उसमें से अंकुर निकले, धीरे धीरे वो लता बढ़ गई, सुंदर सुंदर उसमें फूल आए, फूल से हल्की कुढ़ियाँ निकली, और कुढ़ियों में वो मोती धीरे धीरे पुष्ट हो गया। पुष्ट होने के बाद में जब एकदम सूख गया, तो उसमें से उसको निकाल करके मुक्ता को उसमें से बाहर कर लिया पिताजी और मैया को दे दिया। ये तुम लोग इसके लिए चिंतित हो तो यही सी को भेज दो। अरे नंद बाबा प्रसन्न हुए, इन्होंने दो एक माला दी, इन्होंने गाड़ी छकड़े पर और वहाँ पर भेजा। अब वहाँ पर ललिता इत्यादि सखियों को सुमति जी को ये पता चला, जैसे हमारे पिताजी ने तो थोड़ा सा ही भेजा था और ये गाड़ी में भर कर छकड़े में भर करके भेज रहा है। तो वो यहाँ पर उसकी रखवाली बाकायदा करते थे, तो यहाँ पर वो सब सखियाँ आईं, ललिता विशाखा इत्यादि आईं और कृष्ण से मांगने लगी जे हमें इसमें से थोड़ी सी मुक्ताएं हमको दो। कृष्ण मैं नहीं देता, तुम लोग क्या करेगी, हम अपनी सखी को सजाएंगी। आ तो ख्याल नहीं है जब तुम्हारे पास में कुछ मड़ियाँ थीं, मैं मांगने गया तो तुमने पूछा जे किस लिए, तो हमने कहा जे अपने बैल को और गाय को और बछड़े के खूर में बांधना है, और तुम लोग दिया नहीं सिंह में, हम तुम्हें नहीं दे सकते। अंत में बहुत निहोरा करने लगे, जब नहीं दिया तो वो सब सखियाँ बोले तब क्या हम मोती की खेती नहीं कर सकती। उन्होंने अपने आप उस खेत को एक पास में वो वहाँ पर बरसाने में एक मुक्ता वहाँ पर खेत को जोता और खेत को जोतने के बाद में उन मड़ियों को बीज के रूप में दिया और अपने अपने घरों से घड़ों घड़ों दूध लेकर के उसको सींचने लगे। कुछ दूर में उसमें अंकुर निकलेगा, उसमें अंकुर माने वहाँ पर जंगली जो घास होती है कांटे वाली, कांटे वाली तो पहले उनको देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, जो मुक्ता निकल रही है मुक्ता की, किंतु थोड़े देर के बाद में निकलने के बाद में कांटे और उसमें ये सब निकलने से बड़ी उदास हो। फिर कृष्ण के पास में आई, कृष्ण से बहुत निहोरा किया, अब क्या हुआ
मधुमंगल को लगाया नहीं सुबल को, बोले कि अच्छा ये हमारा ये मुनिब होगा और यही हिसाब किताब करेगा मुक्ता का, कि जितना मुक्ता के बदले और क्या क्या दान लिया।
उन्होंने कहा जैसे अच्छा था मुक्ता हमारी नफली तो कुछ मुक्ता हमको दो, और जैसे ये लेन देन का व्यापार मैं नहीं करता, ये मधुमंगल इसका लोका देखा है और ये सब करेगा, जितना मुक्ता देगा उसका डेढ़ा लेगा। इस प्रकार से यही सब क्रीड़ाएँ बचपन की क्रीड़ाएँ हैं। कृष्ण ऐसे अद्भुत अद्भुत करते थे, राधा जी और भी अद्भुत अद्भुत कार्य करते।
गोपियों ने कृष्ण से कहा अरे धूतराज
शिरोमणि सरोवर बनाया
है।
रतन सरोवर,
रत्न सरोवर वहाँ बरसाने में और उसे एकदम डुबकी लगाओ उसमें से रत्न निकल जाए।
बहुत राजा ने वहाँ से हार भेजा है सगाई के लिए।
हाँ
तो यशोदा मैया और कृष्ण जी ये नंद बाबा
चिंता
परामर्श किया है कि ये ब्याह तो किए हो गए ना, क्यों वो राजा हैं और हम जमींदार हैं गोपन के राजा हैं, 9 लाख गाय है हमारी गाय है और घर द्वार सभी बिक जाएंगे लेकिन हार की पूर्ति ना कर
पाएंगे।
उन्होंने कहा कि अभी नाव पंडित को आज सहमत कर ले, कल ये चला जाए भेज देना। तो कन्हैया ये बात को जानते चरा रहे थे गायें जाए जो है आ करके चुपके थे यहाँ से वो हार चुरा लाए और ला करके यहाँ से खेत कृपा से खोद खोद करके उन्होंने गाड़ दिए। और यशोदा मैया ने सोचा कि कहीं कोई बालक हार ना ले ले तो कहीं अंके रख दे, यशोदा मैया उसको लेने के देखने गई हार गए। तब नंद बाबा के पास गए तो नंद बाबा ने कहा हम तुमको देख कर गया जब से इनकी खुशामद में लगे हम तो गए ना है वहाँ पे। वो फिर जा कर के सारा घर ढूंढ लिया मोती हार ना मिला। जब नंद बाबा के पास फिर आए तो उन्होंने कहा कि देखो कहीं कन्हैया ना आए हो ले गए हो, तो यशोदा मैया नंगे पांव आई है जंगल में, चप्पल ना पहरे उदास चली जा रहे दाऊ जी आगे मिल गए जब तक गायन को आने को टाइम हो गए दाऊ जी आगे आ रहे कन्हैया उद्रोज हो गए पीछे 9 लाख गाय के पीछे तो दाऊ जी ने देखा कि यशोदा मैया जी कैसी आज उदास चली आ रहे हैं तो बोले मैया आज कैसी कभी तो तुम तो घर से ना निकली और आज कैसे उदास चली आ रही हो नंगे पांव कह लाला कन्हैया की सगाई के लिए बरसाने से एक हार आए हो तो वो तो न लाए हो कह मैया हम न जाने जानते थे दाऊ जी की लाए हैं तो उन्होंने ना कर दिया कि वो कन्हैया से पूछ हो जाए अब कन्हैया आज हो गए 9 लाख गाय के पीछे मैया चली जा रही है पीछे तो जब कन्हैया के पास पहुंची कन्हैया से कहा कि लाला पानी पीने गए हो शायद हाल ले आए हो वहाँ से तुम्हारी सगाई में आए हो वो बता रहे तो कन्हैया ने क्या जवाब दिया कि देखो औरे रोज तो सखी चोरी नाम लगाती थी आज तो मैया ही चोरी नाम लगाएंगे औरे दिन तो मैया की ओर ले लेते थे पर अब किसकी ओर लेंगे जब मैया चोरी नाम लगा देंगे तो अब दसोदा मैया लेकिन पूछ रहे हैं कि ब्याह तो करे होगा ना वो ना बता रहे चले आए यहाँ पे गैया बांधा चोरी कर रहे दाऊ जी ने देखा कि अब मैया जो है ज्यादा बेचैन तब दाऊ जी ने कहा कि मैया कन्हैया जो है ले आया है तो दाऊ जी पर कन्हैया बहुत बिगड़े कहे तुमने बता क्यों दिया अब ये बातन बातन में हो गया अंधेरा तो मैया बोली कहा नहीं बेटा बता दो तो हम उसको जो है कल ब्याह कर ना पाएंगे नाऊ पंडित को भेज देंगे कि मैया हम तो वो खेत में गाड़ आए इतने इतने खोद के गए रे हमें बता दो हम कल जो है नाऊ उसे सुनार में सुधरा करके और विदा कर देंगे कि मैया आपको रात में तो मिलेंगे ना और सवेरे अंकुर उसमें निकल आएंगे 7 रोज में मोती आप जितने जाओ उतने ले लेना सुबह अब नंद बाबा यशोदा मैया करेगा तो ये ऐसे ही रह गए चुप भाई रखो हम नाव पंडित को 7 रोज इसलिए उन्होंने उनको रखा और नाव ने सुबह जब वो तो कन्हैया यशोदा मैया को लाए यहाँ पे कहे देख मैया ये जमे जहाँ उन्होंने गाड़े थे वो हमको निकल आए उसमें से पौधा जो है बढ़ने लगा 5 रोज में फूल लगने लगा 6 रोज जो है फल लग गया 7 रोज बोले कहा चल मैया जितने लेना उतना ले यहाँ आ गए तो बाग में का मोती मोती फैल रहे अब बीने मान के ना तो झाड़ झाड़ करके गुहार करके भर करके नाव पंडे सभी देखने आए हैं बाग उस दिन के गाड़ी और छकड़न में मुंडन में लाद के दान दक्षिणा में दे दिए नाव पंडे यहाँ से लेकर के जब ये चले परसवान राजा उधर बाढ़ देख रहे कि 7 दिन हो गए और नाव पंडे तभी सगाई करके ना आए ये अब देख रहे हैं कि हम तो एक हार भेजा है और ये जो है गाड़ी में और छकड़न में मुंडन में मोती लादे चले जा रहे हैं वो उदास होकर के बैठ रहे नाऊ पंडित जब पहुंचे तो उनसे हाल पूछा तो कहा मोती आज के ताजे हैं उनके वो इतने मोती निकल रहे बोले कहा जब इनके उनके मोती इतने रोज निकल रहे हैं और हमारा राज इतना बड़ा होते हुए तब एक हार मैंने जीवन भर में बना पाए तो हम उनसे विवाह कैसे करेंगे तो राजा उधर से आ गई वो बोली बाबा उदास कैसे बैठ रहे जीवन में तो एक हर महीने कमाया तुम्हारी सगाई में भेजा बरसाने और वहाँ पे उनके बाग हैं तुझे वो नाव पंडित में और गाड़े में चक्रम दिलाए दिलाए आज के हमारे ये भी आप कैसे करे हो उन्होंने कहा बाबा चिंता क्यों करते रतन सरोवर में चले जाओ जितना चाहो उतना रतन निकाल ले उन्होंने वहाँ रतन सरोवर बनाया
बहुत कुछ बोलो
बोलो राधा
जय
जय जय जय श्री
राधे
जहाँ जाओ ब्रजवासियों से और उसके स्थान के जुड़ाने वाले महात्माओं से पूछो कि यहाँ पर कौन सी विधा
धाई व जन जनी ब्रजवासी का स्थान निवेदी व चरण धरिया।
रसिक वैष्णव के साथ में जाओ जहाँ जहाँ कृष्ण की लीलाएं हुई हैं और वहाँ के स्थान के रहने वाले लोग महात्मा जानते हैं, उनसे पूछो, देखो कितना आनंद है। यही तो ब्रज में भ्रमण करने का ये तरीका है और यही फल है। जय जय श्री राधे। आप लोगों ने सब प्रणामी दिया होगा, नहीं जो दिया होगा वो प्रणामी दे करके, those that not given प्रणामी दे सुन, offer some।
By now that it's quite interesting story that everyone was laughing. I don't know whether you were involving that laugh or not. This place is called Muktakund. In fact, Krishna got engaged and from Varsana, Vrishabhanu Sutta, with Vrishabhanu Sutta. So Vrishabhanu sent so many things to Nanda Baba and Yashoda. Economically, Vrishabhanu was quite more healthy, wealthy. He had got 11 cows, while 11 lakhs cows, while Nanda Baba had 9 lakh cows. So in engagement, he sent many clothes and many, many good things, many ornaments, and one Muktahar, garland of very costly pearls. They are called Mukta. So when
so much
things came in engagement, instead of becoming happy, Yashoda and Nanda Baba became very sad. They said, so much important and costly things have come, how can we pay them back? Because in return they were also supposed to send to Radharani same important and such ornaments. So they were very much thoughtful. Krishna went there, he realized that Nanda Baba and Yashoda are very much serious and thoughtful. He said, show me what they have sent. Finally, Yashoda Maiya showed. Then he said, give me this garland. It's very nice. And she did not give. Then in the night, he stole. And he took Baldev here. He came here. And Baldev is having haldar. Haldar means?
Plough.
So he plucked that field and Krishna took that garland, pulse, and he sowed it on in the earth and he arranged watering to it through this kund. He created this kru kund also. And next day, when Yashoda came here, when Yashoda saw that pearl garland is not there, she became very worried. She went to Nanda Baba, asked that where is garland, it's missing. So that Brijvasi was also telling very interestingly this whole story, which Maharaj also said. Then they again searched here and there. Nanda Baba said that I was busy in receiving the guest. I have never gone that place where you have kept. You should have kept it very secretly. And they again saw at home, they did not find it. They were very much worried. They say, okay, let's ask Krishna if he has taken it. Then in the evening, restless Yashoda came out from her house. She went towards the place from where Krishna returns after cow grazing. Then Baldev was there. She asked Baldev. Baldev said, I have not taken. Krishna was behind. Then she went to Krishna, asked Krishna. Krishna said, look, so far neighborhood gopis were blaming and alleging that I am thief. Today my mother is herself alleging that I am thief. What will be the situation? Earlier I was taking your shelter, now where should I go to take shelter? So finally when Baldev came to know that mother is so much worried, then he told that Krishna has taken. It was night by that time. Then they asked Krishna. Krishna said, look, it's now night. I have just sowed it there in the garden, so you can't find anything. Now trees are coming, creepers are coming. You wait for 7 days, everything will be okay. They went there, they saw that of course plants came out. And on fifth day, it was big plants and like creepers, flowers also came out. On sixth, fruit came out. And seventh day, these pearls also came out from this. Very beautiful pearls. And Nanda Baba and Yashoda were very happy. Now, they just took out all the pearls. They are too much. Many, many cards together. They put it in cards and they sent it to Vrishbhanu and Kirtida. When it went and Vrishbhanu saw that cards of those Muktas coming, he said he was very again. He was not perturbed. I sent only one garland and they are sending cards together. Then Nai said, the person who took it, his Nai means Barbar. This work was done earlier in our village, still it is being done by Barbar. He says, don't worry, these pearls are of today only. They have got feed of this thing, and daily so many pearls come in their house. And he was totally upset that if daily they get so much pearls, how much rich they must be, how will we have parity? So Maharaj said that gopis, Radharani sent Sakhis to Krishna, asked that if he can give some pearls to them. Then Krishna said, no, I will not give. Why won't you give? Once I came to your Radharani, I asked some pearls from her. She did not give. Why do you want pearls from me? Krishna said, we want it that we will give it to Radharani, we will decorate her. I also asked it that I will decorate my cows and bulls, but you did not give it to me. So they went again. They say, okay, we'll do our own field and cultivation. They did the same thing, but they could not get creeper of this pearls. Rather, this thorns creeper came out. So again, they sent, Radharani sent to Sakhis. Sakhi came here, Lalita Vishakha. They had a very long discussion. Then, okay, I am not a businessman. And I can't do this barter system. Go to Madhumangal, he will do. We will take something from you. We will not give it free of cost. So how much they will give, how much you will give, we will have a bargaining on this. So Maharaj said this story. But he was saying that Radharani said to Vrishbhanu, don't worry. You go to Ratna Kund. You go to a pond that is full of Ratna. Ratna is more precious than pearls also. You get it Ratna as much as you want and send it to them. Anyway, such type of Leela kept on going on. Maharaj says that if we go to different places and talk to the Brijvasis, they can tell such Leelas to us. And it is interesting. Go out, Premanande.
बाबा जी ने जो कहा हमने कहा दान के लिए कमुदी मुक्ताचरिस उसमें हिसाब किताब मधुमंगल करेगा किस चीज का लेन देन का हम मुक्ता देंगे उसके बदले में कुछ लेंगे तो इसमें बहुत कुछ रहस्य छिपे हैं और यदि वो कुंड में यदि मोती मिल गया है ना मोती मिलता उसमें कोई बात विवाद की बात नहीं रह गई इसमें वो भी ठीक है और हम लोगों का दान के लिए चरित्र की किंतु इसमें रस भरा पड़ा है क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा समाधि में ये देखा हुआ चीज है दोनों का सामंजस्य इसको कर लेना गौर प्रेमानंद
पहले ये रास्ता का कुछ नहीं ये सब पाम सोर के पास के रहने वाले ये सब उपवन था कृष्ण के लीला के समय में तो और सुंदर उपवन था कृष्ण यहाँ पर गोचारण करके पाम सरोवर में बछड़ों को गायों को पानी पिलाते अपने पानी पीते अत्यंत सुंदर पवित्र निर्मल मीठा पानी होने के कारण इसका नाम पड़ा पावन सरोवर कमल के फूल इसमें खिले रहते थे भौरे उस पर गुंजार करते थे कोयल कुहू कुहू करती थी चारों तरफ अभी भी मोर का शब्द भी यहीं से सुन रहा था के का मयूर कह रहा के और मयूरी कह रही है का के पुल्लिंग का स्त्रीलिंग मयूर कार्य श्रीमती राधिका के लिए का शब्द का प्रयोग कौन जो कृष्ण रूपी मतवाले रसिक को अपने मान रूपी अंकुश से उसे उठाती बैठाती है, उसको एकदम वशीभूत कर लेती है। कौन है ऐसा जगत में? एकमात्र राधिका। मयूर कहता है तुम नहीं जानती के माने कौन? राधिका जी के धैर्य, धर्म, सहिष्णुता,
लज्जा
मान इसके पर्वत को भी चूर्ण कर देता है अपने एकमात्र दर्शन की छटा से। वो कौन है? कृष्ण। सुखवारी दंड करते हैं परस्पर। सनातन गोस्वामी में देख करके यही भजन का सर्वोत्तम स्थान समझा। यही पावन सरोवर के किनारे बैठते थे, कृष्ण गोचारण करके अपने गैया बछड़ों को वो रास्ता है उधर से लेकर के आते। गोविंद लीलामृत के अनुसार में या कृष्ण भवनामृत के अनुसार में राधा जी का एक राजभवन पास ही में था। विश्वभानु महाराज ने बगीची के रूप में जावट का यहाँ की जमींदारी उन्होंने कुछ ले ली और जो और श्रीमती राधिका जी के लिए अपनी लाडली बेटी के लिए वहाँ पर एक राजभवन बना दिया था। उस राजभवन से ही वो देखती थी कृष्ण गायों को चरा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, बंसी वादन कर रहे हैं। जब यहाँ से स्नान करते तो उधर से वो भी स्नान करने के लिए अपने सखियों के सहित में आ जाती। गोचारण करते जबकि लौटते यदि उनको मान लिया जाए वहाँ जावट में, तो गोचारण करके यहाँ पर जबकि नंदब्रज में प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ से कैसे देखेंगे? किंतु यहाँ पर देखना संभव है इस लीला के कथा के अनुसार में। कृष्ण गोचारण करके आ रहे हैं, गायों के तरफ में ख्याल नहीं है, ख्याल उनका किधर है?
राजभवन राधा रानी के।
इधर उधर झांक रहे हैं कुंजों में, उसके अटारियों में, खिड़कियों में झांक रहे हैं, आंखें खोज रही हैं। और यही से गोपियां नैनो पलाक्ष तनुम गो गो गोप संघावृतम गोविंदम कलवेवादन परम दिव्यांगम। क्या है?
फुल्लेन्दिवरकान्तिमिन्दुवदनं
वरहावतं संप्रियं श्री वत्सांगदार कौस्तुभधरं
पीताम्बरं सुंदरं।
गोपीनां गोपियां यहीं से नैन से उनकी आरती उतारती और कृष्ण उनकी आरती को उन आंखों से ही ग्रहण करते थे। वो स्थान है पावन सरोवर। कभी कभी नंद जसोदा भी यहाँ पर आते थे स्नान करने के लिए, किंतु जसोदा जी जाती थी प्रतिदिन
जसोदा कुंड
में और अपने दोनों बच्चों का और हजारों बच्चों का वहाँ पर क्रीड़ाएं का दर्शन करती थी। वहाँ यहाँ पर मैं समझता हूँ लाखों तीर्थ स्थान है, पद पद में यहाँ पर है। पासी में दोहनी कुंड होगा। पंडा जी कहाँ है? पंडा जी हमारे नहीं आ रहे। अच्छा दिखलाया छाछ कुंड पास में है,
हम लोग निकल गए।
हजारों कुंड यहाँ पर चारों तरफ में है। मनिहारी कुंड है,
पनिहारी
पानीहारी कुंड, जहाँ से कि पानी भर करके लाया जाता था। कितने कुंड हैं और कितने दर्शनीय स्थान है, लीला स्थलियां हैं, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। एक एक रेणु के में ये सब तीर्थ है। कृष्ण की यहाँ पर बहुत दिनों तक लीलाएं। जब गोपियां हैं आई और कृष्ण को यहाँ से अक्रूर ले गई, इसके बाद से गोप गोपी लोग कहीं नहीं गए, यहीं पर रह गए। विप्रलम्ब के लीला वहां पर बतलाया था,
उद्धव की आड़ी,
उद्धव की आड़ी।
यह सब मिलन का स्थान है। यशोदा जी का वात्सल स्नेह यहाँ पर अधिक है। यदि कुछ है तो थोड़ा सा उसमें मधुर रस उसमें मिला है, इसलिए राधा कुंड को हमारे गोस्वामियों ने इससे भी अधिक शुद्ध माधुर्य का वहाँ पर स्थान बताया है। इसमें दास्य भी सम्मिलित है, सख भी सम्मिलित है, वात्सल्य भी सम्मिलित है और इसके बाद में मधुर रस भी है। मधुर रस कुछ कम है, वात्सल्य और सख ही यहाँ पर अधिक है। पौगंड की लीलाएं यहाँ पर यशोदा जी ने अपना जितना स्नेह था सब वात्सल्य भाव कृष्ण के ऊपर में उड़ेल दिया था। यहाँ ब्रह्मा जी देख करके विस्मित है। नारद जी एक बार आए, उन्होंने देखा, अरे ये तो वेदों का प्रतिपाद्य विषय है, परब्रह्म नंद बाबा के महल में उन के आंगन में लोटपोट कर रहा है। रो रहा है मैया गोदी में चढ़ूंगा, दूध पीऊंगा, और वो इस तरह से करते हुए अंगली दिखला रही, तू चोर हो गया है, ढीठ हो गया है, ठुर्क हो गया है, अब तुझे मैं गोदी ली, अभी तुम्हारा श्रृंगार के अभी लौटने लग गया, अभी दूसरे के घर से मक्खन चोरी करके आने लग गया, मैं नहीं लूंगी। और वो उतने लौट रहे हैं, ये देखो तमाशा, ये पर ब्रह्म यहाँ पर लौट रहे हैं उनकी गोदी में जाने के लिए ललक रहे हैं, और ये यशोदा मैया उनको इस प्रकार से कह रही है, ब्रह्मा इत्यादि मन के द्वारा भी तपस्या के द्वारा अत्यंत पावन बना हुआ हृदय में भी उनका ध्यान लीलाओं का नहीं कर पाती, और देखो तो ये गोपी की क्या स्थिति है। इसलिए उन्होंने कहा था, सुतिम परे स्थितमितरे भारत मन्ने भजन्त भव भीता अमी आनंदम बंदे जस्यालिंदे परम ब्रह्म, जिसके आंगन में ये पर ब्रह्म झोल में लोट पोट रहा है, ऐसे नंद बाबा को के जो भवन है, नंद बाबा को मैं प्रणाम कर। और लोग वेदों का अध्ययन करके निर्विशेष ब्रह्मवादी भी बन सके तो बन जाए, संसार के भय से भीत हो करके हम ब्रह्मास्मि करते हैं, वो करते रहे, महाभारत का भजन करे, अर्थात माता पिता और ये वर्णाश्रम धर्म का आदर करते हैं तो करते रहे, भजन तो भाव भीता संसार से भीत होकर के इन सब का ये शरण ग्रहण करें। वेदों में धर्म और अधर्म इत्यादि की बातें की गई है, हमको उससे कोई संबंध नहीं है। मैं तो नंद बाबा के आंगन में, जहां पर कि वो पर ब्रह्म लौटता पलौटता है, मैं नंद बाबा की ही वंदना करता हूं। ऐसे नंद बाबा के या नंद गांव में आप लोग आए हैं, हम लोगों का परम जन्म जन्म कोटि कोटि का ये सौभाग्य समझिए, आज पावन सरोवर में आ रहे हैं, कहाँ मुक्ता कुंड में गए, अब हम लोग टेर कदम्ब में गए, कहाँ हम लोग गए उद्धव क्यारी में गए, नंद बैठक में गए, नंद बाग में गए, चरण पहाड़ी अक्रूर का स्थान है वहाँ गए, बंदा देवी के स्थान गए, कितना गिनाऊं, अभी वहाँ पर चलेंगे, हम लोगों का पाठ प्रवचन होगा, उसमें संक्षेप में और सबका वर्णन करें। यहाँ पर सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है, सनातन गोस्वामी जी हमारे संप्रदाय के गुरु हैं, पहले वे स्वरूप दामोदर, इसके बाद में राय रामानंद जी है, इसके बाद में इन्हीं का नाम आता है, रूप गोस्वामी के गुरु हैं। क्यों गुरु हैं? उन्होंने बृहद भगवतामृत ग्रंथ लिखा, श्रीमद् भागवत दशम स्कंद की टीका लिखी, पहली बार लिखा जो समस्त वैष्णव समाज चमत्कृत हो गया। आज सवेरे उसके लिए कुछ थोड़ा सा मैंने बतलाया था, ऐसी सुंदर सुंदर रश्मि टीकाएं की हैं, जिसको देख करके श्रीधर जी और हनुमत जी वत्सायन जी और सब लोग चमत्कृत हो जाते हैं, अभी भी टीकाओं को देखने से ऐसे मालूम पड़ता है। ये बृहद भगवतामृत हमारे रूप गोस्वामी के लघु भगवतामृत का ये मूल है, भक्ति स्वामी सिंधु उज्ज्वल नीलमणि का भी ये पथ प्रदर्शक है, ऐसे सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया, हमारे समाज को हमारे संप्रदाय को एकदम बांध दिया चारों तरफ से। हम लोग का विचार क्या है, हम किसका भजन करने जा रहे हैं, भजन की का उपासना मार्ग क्या है उन्होंने बताया, और भी ग्रंथ हमारे समाज को ऊपरी रूप से हरिभक्त विलास के द्वारा एकदम बांध करके रखते हैं, कि कैसे मंदिर होना है, कैसे उपासना, कैसे वैदिक भक्ति, ये सब का विषय है। ये यहीं पर भजन करते थे, उनकी बातें हम दो एक हम आप लोगों को हम लोगों ने सुनाया, अभी ये बच्चा ने सुनाया, अभी रात हो जाएगी, बस यही उनके चरणों में हम लोग पुष्पांजलि दे करके वहाँ पर थोड़ा सा उनके वर्णन करने की चेष्टा हम लोग करेंगे, आप प्रणाम करके अब सीधे वहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम लोग आज हम लोगों की बड़ी भारी एक गलती हो गई, मैं जब भी आता था सब वैष्णव को यहाँ से बुला करके एक साथ में प्रसाद इत्यादि, आज हमें याद ही नहीं रही, हमारा कपाल फूट गया, हमको याद ही नहीं रही, इसलिए वैष्णव से हम क्षमा मांगते हैं।
शरीर खराब तो
हमको याद नहीं रही। अच्छा जैसा हो, सनातन गोस्वामी पाद की
जय,
बामन सरोवर की
जय।
श्री यहाँ पर एक और चीज भूल गया, ये इस स्थान की स्थापना हमारे पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पारसी शब्द भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने की। प्रभुपाद जी का यह मठ पहले जो था हमारा बंगाल में, उस समय में साग की पत्तियां बनती थी, वही ब्रह्मचारी लोग खाते थे, बोरा बिछा करके सोते थे, दिन रात भजन करते थे, रहने के लिए घर नहीं थे, पलंग और चारपाई और ये घड़ी टड़ी ये जो देख रहे हैं ये सब एकदम कुछ नहीं, निष्किंचन रूप में भजन करते थे किसी प्रकार जीवन धारण करके। हम लोगों के गुरु महाराज जी बड़े भारी जमींदार फैमिली के थे, ये महाराज जी थे वो भी बड़े रेलवे में बहुत बड़े ऑफिसर थे, सब लोग छोड़ करके आए। ये बोले जैसे मैं 5 रुपया दिया करूंगा महीने में, उस समय में आज से करीब 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 70-80 वर्ष पहले लोग बड़े प्रसन्न हो गए। उस समय में 1 रुपये में 20 किलो चावल आता था, 1 रुपये में तो हम ही नहीं देखा था जी, 1 रुपये में 1 मन गुड़ आता था, 1 रुपये में 8-10 दिन खूब अच्छी तरह से 10-20 आदमी का चल जाता था। उस समय वहां पर साग सब्जी किसी प्रकार से मिला करके सब्जी इत्यादि से मठ चलता था। जब ये आए तो ये पैदल ऐसे नहीं चलते थे, कारों में जाते बड़े बड़े सेठों के यहाँ और ऐसे हरी कथा करते जो 10-10, 20-20 हजार रुपया तेल घी गुड़ इत्यादि सब आने लगा और मठ एकदम चारों तरफ में बनने लगा, मायापुर इत्यादि मठ बन गया और चारों तरफ भारत में प्रचार हुआ। इनकी योग्यता दे करके इनका नाम रखा अप्राकृत भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज नाम। सारंग कहते हैं बजाने को, गीत के साथ में सारंग बजता है ना, और सारंग का स्वर इतना के हारमोनियम इत्यादि नहीं, हारमोनियम कोई वाद्य संगीत का कोई ये नहीं, ठीक नहीं है वो, उसमें स्वर ऐसे मूर्छना इत्यादि आरोह अवरोह उसमें नहीं आ सकता है जितना कि सारंगी में आता है। इसलिए भक्ति सारंग अर्थात उस कीर्तन के साथ में ये सारंग बजता है, उसकी सहायता करता है। तो ये प्रभुपाद जी के ये भक्ति रूपी ये सारंग थे, इनको उन्होंने इंग्लैंड में भेजा, पाश्चात्य देशों में भेजा और वहाँ पर जाकर के ये बड़े बड़े लोगों से मिले, वहाँ के राजा से मिले। उस समय में कौन थे, एलिजाबेथ थी या पंचम जॉर्ज इत्यादि युवराज थे, उनसे मिले, वहाँ का जो वायसराय था उससे वो जाकर के मिले और वहाँ पर उन्होंने पहली बार वन महाराज जी गए थे, वो वहाँ से चले आए थे। इसके बाद में प्रभुपाद जी को उन्होंने भेजा था, वहाँ पर प्रचार किया, भारतवर्ष में बहुत जगह इन्होंने मठ इत्यादि की, हमारे गुरु महाराज के परम बंधु थे। इस प्रकार से उन्होंने ये स्थान को दे करके इस स्थान को उन्होंने लिया था और तो ये कोठरी बना करके भजन करने के लिए रखा था। पीछे से हमारे ये महाराज जी भक्ति क्या अकिंचन महाराज जी हैं, उन लोगों के अनुगत्य में बहुत सुंदर सुरम्य छोटा सा मंदिर कितना सुंदर बनाया और भजन करने के लिए ये कोठरियाँ बनाई। मैंने भी यही सोचा था कि मैं अंत में यहीं पर आऊँगा, इन लोगों के आश्रय में इसी पीलू के वृक्ष के नीचे अकिंचन रूप में कुछ दिन भजन करूँगा। ये लोग परम सौभाग्यवान हैं जो निरपेक्ष होकर के ये भजन करते हैं, विशेष करके हमारे ये भक्ति चकोर
श्रौती महाराज,
श्रौती महाराज ये श्लोक लोग भजन करते हैं। हमको भी देख करके इच्छा होती है, अब सामर्थ्य वैसे भजन करने की नहीं है, माधुकरी भी नहीं लेकर के जीवन निर्वाह कर सकते। हम इस स्थान को और महाराज जी को भी प्रणाम करके और हम लोग अब चलिए, नहीं तो रात हो जाएगी। गौर प्रेमानंदे
महाराज।
Savannah.